namo bhagavate vasudevaya Satin Vyasam Tato Jaya Mudire Nasya Prayesu Avatresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir bhavati nishtike Mukhangrati vachalam pangulangayate girim Yatrupatam aham bande sri gurum dinatarinam Sri paramananda madhavam आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध 25वें अध्याय श्लोक नंबर 37 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। इमं तं अधितिष्ठस्व पुरिं नवमुखिं विभो मयोपानितानं गृणन् मयोपानितान् गृणानः कामभोगान् सतं समा इमं तं अधितिष्ठस्व पुरिं नवमुखिं विभो मयोपनीतान् गृणानः कामभोगान् सतं समाः इमं तं अधितिष्ठस्व पुरिं नवमुखिं विभो मयोपनीतान् गृणानः काम भोगान सतं समाः सभी प्रकार से तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति हो सके। तुम यहाँ 100 वर्षों तक रह सकते हो और तुम्हें भोग की सारी सामग्री प्रदान की जाए। तत्पर धर्म हमें प्रगति के लिए सहायता मिल रही है। जीवन के प्रारंभ में मनुष्य को ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षित किया जाता है और फिर उपयुक्त लड़की के साथ विवाह करके गृहस्थ जीवन बिताने दिया जाता है। यदि गृहस्थाश्रम की ठीक से शिक्षा मिले तो मनुष्य को मानव जीवन की समस्त सुविधाएं, भोजन, नींद, संभोग तथा सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। यदि विधि विधान के अनुसार सब कुछ किया जाए तो प्रत्येक सुविधा उपलब्ध है। स्वतंत्र रूप से भोग की कामना करने के कारण जीव मायाग्रस्त हो होकर माया द्वारा प्रबलित शरीर प्राप्त करता है और इस संसार में जन्म ग्रहण करता है। इस संसार में जिसको भोग माना जाता है, विशेष रूप से संसार का भोग है कि अच्छा खाना, आहार, निद्रा, अच्छी तरह निद्रा, संभोग और अपनी सुरक्षा। तो जीव इसी को संसार का भोग मानता है और सोचता है स्त्री को प्राप्त करके वो इस सारे भोग को प्राप्त कर सके, अपने जीवन को सार्थक कर सके। यद्यपि जीव की ये परिकल्पना है तो संसार में भोग करेगा भगवान को भोगकर, किंतु भगवान ने संसार को इस तरह बनाया है कि यहां कोई भी जीव भोग नहीं कर सकता। और जो भी तथाकथित भोग जीव प्राप्त करता है इस भौतिक संसार में, वो तथाकथित भोग अल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए, और उसके बदले में जीव को अनंत दुख भोग करना पड़ता है। अल्प सुख के बदले में अनंत दुख, यही है भौतिक संसार, जिसको दुखालय और अशाश्वत बना है, शाश्वत नहीं। तो दुख के संसार में हम कितने भी परिकल्पना करें सुख भोग करने के लिए, हम सुख भोग नहीं कर सकते। फिर भी जब जीव इस भौतिक संसार में आता है, उसको जो भी थोड़ा बहुत सुख प्राप्त होता है, उसके साथ साथ वो कैसे इस भौतिक संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है, उसके लिए भगवान ने वेदों की रचना की, वेदों का ज्ञान प्रदान किया। और वेदों के ज्ञान के आधार पर जीव यदि अपने जीवन को निर्वाह कर सकता है, तो उसमें इस जीवन में वो थोड़ा बहुत सुख तो प्राप्त होता है, उसके साथ साथ वो दुखों से कैसे सदा के लिए मुक्त हो सकेगा, उसका उपाय भी कर सकता है। इसलिए वेदों में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है कि मनुष्य इन वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था को मानकर यदि चले तो हो सकता है कि इसके आधार पर वो धीरे धीरे इस भौतिक संसार के दुख से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। तो वर्णाश्रम के आधार पर ये बताया गया है कि चार वर्ण और चार आश्रम, चार वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार आश्रम है ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो ये चार अवस्थाएं जो है विशेष रूप से आश्रम की जो व्यवस्था है, तो ये सब ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, अर्थात ब्रह्मचर्याश्रम में यदि व्यक्ति को उपयुक्त शिक्षा प्राप्त होती है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो जीवन के उद्देश्य को जानने के पश्चात ब्रह्मचारी यह निश्चित करेगा कि वो प्रवृत्ति मार्ग में जाएगा या निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में जहां थोड़ा बहुत सुख साधन उपलब्ध होता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, और निवृत्ति मार्ग में ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकते, क्योंकि वो जीवन के लक्ष्य को जानता है कि जीवन का लक्ष्य इस भौतिक संसार में रहना नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण की सेवा करते हुए भगवान कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त करना, उनके प्रेम को प्राप्त करना। तो जब व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को समझ लेता है तो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए उस संन्यास ग्रहण करके काय मन और वाक्य से भगवान की सेवा में लग जाता है। और इस प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को सार्थक करता है, भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहे, जिसके फलस्वरूप कोई संसार में सेवा सुख प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात भगवत धाम प्राप्त करता है जहाँ अनंत सुख प्राप्त होता है। किंतु ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद यदि ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को संयमित करने में असमर्थ अनुभव करता है, वो अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकता, तो उसके लिए व्यवस्था दी गई। ये धर्म के आधार पर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अर्थ यह नहीं है कि उसको इंद्रिय भोग करने का लाइसेंस प्राप्त हो। गृहस्थ आश्रम एक दायित्वपूर्ण आश्रम होता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ बाकी जो तीन आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, उनका पालन पोषण गृहस्थ करता है, क्योंकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी ये अपने जीवन धारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते, केवल भगवान की सेवा में लगे रहते, इसलिए गृहस्थ इन तीन आश्रमों का पालन पोषण करते। गृहस्थ के ऊपर ये गुरु दायित्व दिया गया, तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि जब कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसके पहले तो ये समझे कि अपना गृहस्थ आश्रम उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए और उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन के लक्ष्य को जाने बिना, गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य को जाने बिना जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है वो लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है, अपने लक्ष्य को दूर चला जाता है और केवल इंद्रिय भोग के ही जीवन के लक्ष्य के रूप में मानता है। ऐसे गृहस्थ वस्तुतः गृह मेधी कहा जाता है, और गृह मेधी होने के कारण उसका परिणाम होता है कि वह नीचे से नीचे योनि में चला जाता है, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य को न जानकर वो इंद्रिय भोग में लगे रहकर दुर्लभ मनुष्य जन्म को नष्ट कर देता है, इसलिए उसका पतन अवश्य उसका पतन होता है, और इस प्रकार वो हीन योनि में जन्म ग्रहण करके नर्क यंत्रणा भोग करता है, कष्ट भोग करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्राचीन काल में जैसे तो देखा गया है, जब कभी पिता पुत्र को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए कहता था तो पुत्र क्या करता था, वो किसी कन्या के, किसी लड़की के संधान में नहीं निकलता था कि पिता ने अब बोल दिया है मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है तो हमें कोई सुंदर स्त्री देखना या लड़की देखना चाहिए, तो लड़की की खोज में वो नहीं जाता था, सर्वप्रथम वो तपस्या करने जाता था। जैसे प्रचेता अगर महाराज प्रसन्न भाई की बात चल रही है तो महाराज प्रसन्न भाई ने अपने पुत्रों को आदेश दिया था प्रजा सृष्टि करने के लिए, प्रजा सृष्टि करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना आवश्यक, किंतु प्रचेतागण तुरंत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं, वो तपस्या करने चले गए। भगवान विष्णु जब संतुष्ट होते हैं तो व्यक्ति एक उपयुक्त स्त्री को प्राप्त होता है, और उपयुक्त स्त्री को प्राप्त होने से वो व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है। ये बहुत आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अर्थ है कि स्त्री के सहयोग से व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को प्राप्त हो, और स्त्री का कर्तव्य है स्वामी को इस कार्य में सहयोग दे। यही वास्तविक गृहस्थ आश्रम। तो जो व्यक्ति ये जानता है कि गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य क्या है, तो जानकर गृहस्थ आश्रम प्रवेश करता है तब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्राचीन काल में ये देखा जाता है, लोग जाते थे तपस्या करने के लिए भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए और उनकी कृपा से एक अच्छी स्त्री प्राप्त करने, जिससे कि उनका गृहस्थ जीवन सफल हो सके। और उसके साथ साथ प्राचीन काल से ये भी व्यवस्था है, जब कोई युवक विवाह करने जाता है तो जिस लड़की के साथ विवाह करता है वो लड़की कैसी है, उसके साथ उसका आचार व्यवहार ठीक रहेगा या नहीं, इसको हम केवल लड़की के रूप को देखकर नहीं जान सकते। आजकल लोग देखते हैं कि कौन कितना सुंदर है, केवल रूप देखते हैं, गुण नहीं देखते। तो ये पहले हमें गुण देखना चाहिए। एक कहा जाता है एक महाकाल फल जो देखने में बहुत सुंदर होता है, किंतु उस फल को जब आप तोड़ देंगे तो भीतर अंगार जैसा काला काला तो उसी प्रकार हो सकता है कि कोई स्त्री बहुत सुंदर हो किंतु उसमें सारे दुर्गुण भरे हुए हो, तो ऐसे स्त्री को लेकर व्यक्ति क्या करेगा। इसलिए देखा जाता है कि एक उपयुक्त स्त्री प्राप्त हो गृहस्थ जीवन को सफल करने। तो जैसे जन्म पत्री को मिलाते, क्योंकि ऐसे तो कोई जान नहीं सकता कि किसी का कैसा गुण है, लोग दूसरों से पता करते हैं, जो उसके नजदीक वाले हैं उनसे पता करते हैं, किंतु विशेष रूप से जन्म पत्र मिलाते कि लड़का और लड़की के जन्म पत्र को मिलाकर उनके क्या गुण होंगे उससे पता चलता है कि दोनों में उनका दोनों का व्यवहार में मेल रहेगा या नहीं, तो उसको देखकर विवाह होता। तो यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रभुपाद यहाँ कहते हैं तात्पर्य कि धर्मार्थ काम मोक्षाय दारा संप्राप्ति है, कि दारा अर्थात स्त्री प्राप्त होने का जो मुख्य कारण है क्या है, व्यक्ति क्यों गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, क्यों स्त्री को प्राप्त करेगा, उसका मुख्य कारण क्या है, इंद्रिय भोग नहीं। कहते हैं धर्म काम मोक्ष। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चतुर्वर्ग जीवन के चार वर्ग, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति करना ये जीवन का लक्ष्य बताया गया कि व्यक्ति धर्म आचरण करे, और हर धर्म आचरण में स्त्री के साथ धर्म आचरण करने के लिए कहा गया। गृहस्थ को अकेले धर्म आचरण करने के लिए नहीं कहा गया, स्त्री के साथ करने के लिए कहा गया। इसलिए कहा गया है क्योंकि स्त्री को यदि धर्म मार्ग में स्वामी नहीं लाएगा तो स्त्री गृहस्थ जीवन में स्वामी को दुख दे सकती है, उसकी चेतना भोग की चेतना रहे, स्त्री की चेतना भोग की चेतना, इसलिए उसकी भोग की चेतना को नियंत्रित करने के लिए ये आवश्यक है कि स्वामी स्त्री को साथ लेकर धर्म अनुष्ठान, जिससे कि स्त्री शांत रहेगी और स्वामी भी शांत रहेगा और दोनों मिलकर धर्म अनुष्ठान, नहीं तो स्त्री हर समय स्वामी को भोग के लिए प्रबंध करे, स्त्री स्वामी को धर्म अनुष्ठान करने नहीं दे। इसलिए यह आवश्यक है कि दोनों मिलकर धर्म अनुष्ठान करें, जिससे दोनों संयत स्वभाव से भगवान की पूजा करें और इस प्रकार जीवन के लक्ष्य को समझें। धर्म अनुष्ठान करने से भगवान की कृपा से व्यक्ति अर्थ को प्राप्त होता है और धर्म के आधार पर जितना भोग करने की आवश्यकता व्यक्ति कर सकता है धर्म के आधार। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि धर्म आधारित काम में तो व्यक्ति काम भोग कर सकता है किंतु धर्म के आधार, अधर्म के आधार पर ये गृहस्थ का कर्तव्य। शास्त्रों में जिस प्रकार बताया गया कि केवल पुत्र प्राप्ति के लिए व्यक्ति संभोग करे न कि इंद्रिय तृप्ति के लिए, इसलिए शास्त्रों में बताया गया पुत्रार्थ प्रियते भार्य, केवल पुत्र प्राप्ति के लिए भार्य की आवश्यकता अन्यथा नहीं। तो इससे व्यक्ति की थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति भी हो जाती है और व्यक्ति पुत्र संतानों को प्राप्त और इस प्रकार वंश की रक्षा होती है। और इसके साथ साथ जब व्यक्ति धर्म अर्थ और काम को भोग करता है गृहस्थ जीवन में तो स्वामी स्त्री दोनों मिलकर मोक्ष के लिए प्रयास करें, मुक्ति के लिए प्रयास करें। तो वानप्रस्थ आश्रम से पहले है इसलिए कहा गया है कि स्वामी स्त्री को लेकर तीर्थाटन करें, तीर्थ में जाए और तीर्थ में जाने का उद्देश्य तीर्थ स्थान में महान भक्तों की सेवा करें, उनसे भगवान की कथा श्रवण करें और जब घर पर हो तो स्वामी स्त्री ये महान वैष्णव भक्तों को बुलाकर घर पर सत्संग का आयोजन। तो घर पर बार बार सत्संग का आयोजन करने से उनकी चेतना कृष्ण चेतना में रहती, क्योंकि वो भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। गृहस्थ लोगों को सदा सर्वदा मंदिर में या सत्संग में जाने का अवसर प्राप्त नहीं होता, जब जब अवसर प्राप्त हो तो व्यक्ति को जाना चाहिए सत्संग, किंतु जब प्राप्त नहीं होता है तो व्यक्ति घर पर ऐसे महान भक्तों को बुलाकर सत्संग की व्यवस्था कर सकता और दूसरे लोगों को भी उस सत्संग में बुला सकता है। इस प्रकार कृष्ण चेतना का प्रचार हो सकता है और गृहस्थ पति पत्नी दोनों भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होते हैं, वैष्णव उनकी सेवा करने का अवसर उनको प्राप्त होता है, इस प्रकार वो शुद्ध होते हैं। और श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हर गृहस्थ को भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो घर पर यदि संभव हो तो कोई विग्रह की सेवा, विग्रह रखकर सेवा कर सकता है, अन्यथा कम से कम फटो रखकर भगवान की सेवा कर सकता है। तो इससे गृहस्थ की चेतना शुद्ध होती, क्योंकि गृहस्थ क्योंकि ये इंद्रिय भोग में थोड़ा बहुत लगा रहता है इसलिए उसकी चेतना अशुद्ध होती। तो उस चेतना को शुद्ध करने के लिए इस प्रकार धर्म अनुष्ठान करना, सत्संग का आयोजन करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम कीर्तन करना और भगवान की कथा श्रवण करना ही आवश्यक। तो इस प्रकार व्यक्ति धर्म अनुष्ठान में लगे रहने से वो गृहस्थ जीवन जीवन में भी कृष्ण चेतना में रस है, ये बहुत आवश्यक है। तो जो लोग कृष्ण चेतना में नहीं रहते, केवल इंद्रिय भोग को जीवन का लक्ष्य मानते हैं, तो ये लोग दुखी भोग करते हैं, दुखी दुख भोग करते हैं। इसलिए बताया गया है कि धर्म अर्थ और काम मोक्ष के लिए गृहस्थ को प्रयास करना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो स्त्री जो बुद्धि का प्रतीक है, अशुद्ध बुद्धि का प्रतीक है, ये जीव को भोग प्रदान करती है। अर्थात जीव अपनी बुद्धि के द्वारा भोग की व्यवस्था करता है, तो बुद्धि इसमें सहयोग देती है। जो अशुद्ध चेतना है, अशुद्ध बुद्धि है, वो तो जीव को सहयोग देती है संसार को भोग करने के। तो यहाँ पर स्त्री के रूप में जो अशुद्ध बुद्धि है वो कह रही है, इमान तंगतिष्ठस्व पुरिंग नवमुखी। तो स्त्री पुरंजन से कह रही है कि हे प्रभु, हे स्वामी, ये जो आपके लिए जो पुरी है, नवमुखी, नव द्वार वाली पुरी नगर, इस नगर में आप अधिष्ठित हो, आप निवास करें और इंद्रिय भोग प्राप्त करें। क्योंकि व्यक्ति इंद्रिय भोग को प्राप्त करता है शरीर के माध्यम से। यदि यह शरीर नहीं होता तो इंद्रिय भोग की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि शरीर है इसलिए इंद्रियां है। तो ये शरीर भौतिक शरीर है, इसलिए भौतिक शरीर में हम इंद्रिय भोग में लगे रहे। तो ये भौतिक शरीर, ये नव द्वार वाला नगर भौतिक शरीर, इसमें नव द्वार है। तो इस नव द्वार वाले जो नगर है, इसी के माध्यम से ही व्यक्ति भोग कर सकता है। जैसे शरीर जब नहीं रहेगा व्यक्ति भोग नहीं कर सकता। जो लोग आत्महत्या करते हैं वो तो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। प्रेत योनि को प्राप्त होने का अर्थ है कि वो लोग शरीर को प्राप्त नहीं करते, उनमें उनका मन होता है, मन बुद्धि अहंकार होता है, किंतु शरीर नहीं होता, प्रेत योनि। इसलिए मन में भोग की कामनाएं होती, किंतु भोग करने के लिए शरीर चाहिए और प्रेत लोग के पास शरीर नहीं। और यही कारण है कि प्रेत योनि को प्राप्त जीव वो क्या करता है, वो घूमता रहता है, तो देखता है कोई दुर्बल जीव है उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। क्यों प्रवेश करता है? उसके शरीर में प्रवेश करके वो भोग करना चाहता है। इसलिए भूत, किसी को भूत लगता है, भूत सवार हो जाता है किसके ऊपर, इसका यही कारण है। क्योंकि भूत का शरीर नहीं है, वो किसी के शरीर के माध्यम से भोग करना चाहता है, इसलिए भूत सवार होता है। तो ये भौतिक शरीर जो है ये भोग का साधन माना है। भौतिक शरीर के माध्यम से व्यक्ति भोग कर सकता है। तो इसलिए ये स्त्री कह रही है, जो अशुद्ध बुद्धि वाली स्त्री कह रही है कि इस शरीर में आप अधिष्ठित हो, इस शरीर को भोग कर, शरीर के माध्यम से भोग कर। मयोपनीतान ग्रहण, और मेरे द्वारा ये सारी व्यवस्था की स्त्री बता रही है। स्त्री सुख भोग की व्यवस्था करती है, स्त्री को स्त्री किस प्रकार स्वामी को आकृष्ट करती है, आहार के माध्यम से। यदि स्त्री स्वादिष्ट भोजन बना सकती है तो स्वादिष्ट भोजन बनाकर स्वामी को खिलाते हैं तो स्वामी आकृष्ट होता है स्त्री के प्रति कि आहार, ये आहार एक साधन है। तो स्त्री सुंदर आहार बनाकर स्वामी को खिला सकती और स्वामी को खुश रख सकती, प्रसन्न रख सकती। और आहार एक भोग का साधन, क्योंकि हर जीव यही चाहता है कि स्वादिष्ट आहार करे। और विशेष रूप से मनुष्य में होड़ मची हुई है स्वादिष्ट आहार खाने की, इसलिए लोग घर में संतुष्ट नहीं होते हैं। और आजकल स्त्रियां तो रसोई भी नहीं बनाती है वो स्वामी को क्या संतुष्ट करे तो दूसरे घर में वो नौकर रख देते हैं, नौकर बनाते हैं, नौकर या नौकरानी बनाती है, उसी को दोनों खाते। तो कैसे स्वामी स्त्री में संपर्क की वृद्धि हो, क्योंकि जिसके प्रति प्रेम की भावना हो तो वहां पर व्यक्ति अपने हाथ से बनाकर उसको देना चाहिए। स्त्री का यदि स्वामी के प्रति प्रेम की भावना हो तो स्वयं बनाकर स्वामी को खिलाए। जैसे द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण रहते थे तो द्वारका में दास दासियों का अभाव नहीं था भगवान कृष्ण की सेवा करने के, किंतु रानियां स्वयं अपने हाथ से भगवान की सेवा की। ये प्रेम का प्रतीक, जिसके प्रति हमारा स्नेह है, प्रेम है, हम स्वयं उसकी सेवा करने से, ना कि कोई दूसरों को लगा देंगे उसकी सेवा की। दूसरों को लगाने का अर्थ है कि हमारा स्नेह नहीं, प्रेम नहीं। तो आजकल घर में खाना नहीं बनता है, लोग बाहर खाना पसंद करते हैं, फास्ट फूड। तो ये आहार जो है ये एक भोग का साधन, निद्रा, संभोग और अपनी सुरक्षा। तो स्त्री इसके लिए साधन बनती है स्वामी के, वो सारी व्यवस्था करती है। घर में स्वामी को बांध करके रखने के लिए स्त्री ये सारी व्यवस्था करती है। जिस घर में ये साधन उपलब्ध नहीं है उस घर के प्रति स्वामी कभी आकृष्ट नहीं होता है, वो घर से दूर रहता है। तो इसलिए ये स्त्री बता रहे पुरंदर कि मयोपानीयता विना, ये मेरे द्वारा ये व्यवस्था की गई आपके भोग के लिए, आप इसको ग्रहण करें। आपके भोग के लिए जो व्यवस्था, सारी व्यवस्था मैंने कर रखी। काम भोगान सपनी समा, और कब तक आप काम भोग करेंगे, इंद्र भोग करेंगे, सपन समय 100 वर्ष के लिए। 100 वर्ष क्यों कहा गया है, क्योंकि जीव के इस शरीर में जीने की जो अवधि है ये 100 वर्ष माना गया है। तो इसलिए स्त्री कह रही है 100 वर्ष तक अर्थात जब तक आप इस शरीर में हो, तो इस शरीर के माध्यम से भोग करने के लिए मैंने सारी व्यवस्था की है, आप इसको ग्रहण कीजिए। तो जब इस प्रकार का प्रलोभन कोई स्त्री देती है तो कोई भी पुरुष आकृष्ट हो जाना स्वाभाविक। और ऐसे ही पुरंदर स्त्री के प्रति आकृष्ट हो गया और स्त्री भी पुरंजन के प्रति आकृष्ट, और स्त्री इसलिए आश्वासन दे रही पुरंजन को कि आप मुझे ग्रहण करेंगे तो मैं आपके लिए सारे सुख भोग की व्यवस्था करूंगी, आप चिंता मत करिए। तो इस प्रकार जीव माया और यदि वह कृष्ण चेतना में नहीं है तो उसकी गति जो है वह नीच गति होती है। किंतु यदि कृष्ण चेतना में जीव है, कृष्ण चेतना में रहकर वह संयमित रूप से जीवन का भोग करे तो उससे वह निकल सकता है। 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहकर फिर वह वानप्रस्थ और संन्यास ले सकता है और अंत में अपने जीवन के लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति को प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण।